मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 17 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी आसिफ खान का जो सिजावता गांव के हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, पहले एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि हर महीने मैं उन्हें करेंट अफेयर्स पर बेस्ड एक स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, जिसके अंतर्गत पिछले महीने की जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कलेक्शन ऑफ इवेंट्स नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका कलेक्शन मैं प्रोवाइड करता हूं। और उस पूरे के पूरे सेक्शन को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उसका जो दूसरा भाग होता है वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, और जो तीसरा भाग होता है वो रेफरेंसेस से संबंधित, संदर्भ से संबंधित है। उसके तहत दो तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है ताकि आप उनका उपयोग अपने आंसर राइटिंग में या निबंध लेखन में कर सके। तो फ्रेंड्स, जो इस महीने का जो आप कह लीजिए करंट अफेयर्स की जानकारी है इस महीने की, वो आप लोगों को भेजी जा चुकी है। आप लोग अपने अपने मेल को देख लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, राइट। तो ये एक छोटी सी सूचना थी। आइए अब हम दूसरी घटनाओं पर आते हैं। आज मैं आपको एक रिपोर्ट आई है जैव विविधता पर, उसके बारे में कुछ जानकारी मुख्य विषय के तहत दूंगा, लेकिन पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में और न्यूज में भी बड़ी प्रधानता के साथ एक खबर है और वो ये है कि रूस ने जो एक वैक्सीन का निर्माण किया है कोविड वैक्सीन का, भारत की जो दवा निर्माता कंपनी है रेडीज, डॉक्टर रेडीज, उसके साथ उसका टाई अप हुआ है और लगभग 10 करोड़ वैक्सीन भारत में तैयार किए जाएंगे। ये एक छोटी सी खबर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है, यानी कोरोना के जिस माहौल में हम रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही दिलासा देने वाली खबर है और उम्मीद की जा रही है कि शायद नवंबर से ये वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो जाएगी। अब यहां पर जो विशेष रूप से मैंने इस विषय को आपके लिए चुना है वो इस आधार पर चुना है कि जैसे मान लीजिए कि भारत ने वैक्सीन बना ली, और वैसे भी आपको मालूम है कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत विश्व का अग्रणीय देश है। दुनिया में जितने भी वैक्सीन बनते हैं उसमें से 60% का प्रोडक्शन सिर्फ भारत में होता है, ये आपके दिमाग में अंडरलाइन होनी चाहिए। और वैसे भी दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत का बहुत आगे स्थान है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग को दौड़ाइए कि जब ये वैक्सीन बन जाएगी, है ना, ये आप यूं कह लीजिए कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सोचने के लिए कह रहा हूं कि जब यह वैक्सीन बन जाएगी तो अब इसका क्या उपयोग होगा। सीधी सी बात है कि अब वो वैक्सीन लोगों को लगाया जाए, हमारे देश के लोग जो हैं उनको, उनका टीकाकरण किया जाए, उन तक ये वैक्सीन पहुंचाया जाए। तो अब आपको सोचना केवल यह है कि वैक्सीन के बनने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने की जो सप्लाई चेन होगी, जो आपूर्ति की पूरी श्रृंखला होगी, वो क्या क्या होगी। सपोज मान लीजिए कि आप हेल्थ सेक्रेटरी हैं और आपको यह जिम्मेदारी दी गई है कि यह वैक्सीन बन गया है, बन गई है और इसे लोगों को लगाया जाना है, आप इसकी पूरी प्लानिंग कीजिए। तो आप कौन कौन सी मुख्य प्लानिंग करेंगे, बस केवल इसके बारे में आप सोचिए, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सही प्रिपरेशन भी है। तो दोस्तों, ये होमवर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है, इस बीच में आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे नहीं की है और ये भी इसे भी आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का ही एक हिस्सा मान करके चल सकते हैं कि देख रहे हैं हमारे सामने सुशांत की हत्या, आत्महत्या का मामला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी कंगना रनौत जो है उनका मामला आ गया है। ये दोनों के दोनों मामले कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़े हुए, चलिए राजनीति एक अलग हिस्सा है ना, राजनीति को आप निकाल दीजिए, लेकिन एक प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला आप मान लीजिए क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट कि जो राजनीति है उसका प्रशासन पर दबदबा होता है, लेकिन प्रशासन के पास अपनी कुछ आप कह लीजिए कि अलग किस्म की शक्तियां भी हैं। तो अब आप प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन जिस तरीके से निर्णय ले रहा है, राजनीति का जिस तरीके से प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है और प्रशासन जिस तरीके से राजनीति के आदेशों के साथ एक्शन ले रहा है या व्यवहार कर रहा है, इन सब पर आपको विचार करना चाहिए। अपने अपने स्तर पर विचार करना ही चाहिए कि प्रशासन को क्या करना चाहिए, प्रशासन कहां सही है, प्रशासन कहां गलत है। इस पर आप लोग विचार कीजिए, क्योंकि आप यही बनने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं अपनी ओर से अभी कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, है ना। अगर आप चाहें तो इसके साथ ही थोड़ा सा राजनीति को भी आप देख सकते हैं कि क्या सही में घटनाओं का इस तरह से राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। अगर राजनीतिकरण किया जाता है तो फिर प्रशासन का उसमें क्या रोल होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी ना अपनी तैयारी को यह रूप भी दें, केवल किताब पढ़ना, इससे थोड़ा सा उबरें। इसीलिए मैंने आपको, आपके सामने आज ये दो, आप यूं कह लीजिए केस स्टडीज जैसे मामले रखे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके बारे में चर्चा है और मुझे लगता है कि इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। उसमें यह है कि एक जो टीवी चैनल है उसके कई किस्तों के कार्यक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं जिस तरीके से अब न्यूज़ का उपयोग करने लगे हैं, जिस तरह के प्रोग्राम देने लगे हैं, तो हो सकता है कि शायद उन्हें एक सही दिशा मिल सके। हुआ यह कि इस टीवी चैनल ने एक कार्यक्रम तैयार किया था और उस कार्यक्रम में एक समुदाय विशेष को यूपीएससी जिहादी बताया था कि यूपीएससी जिहादी, और उस कार्यक्रम में जो उस समुदाय के सिविल सेवा में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन अधिकारियों को भी लगभग उसी यूपीएससी जिहादी कलर से रंगने की कोशिश की गई थी। तो आप इसे एक तरह से सांप्रदायिक भावना से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, जातिगत भावना से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, द्वेष और घृणा फैलाने वाला कह सकते हैं, सामाजिक तनाव पैदा करने वाला कार्यक्रम कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। तो ये एक फैक्ट है, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का है, तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल लेटेस्ट है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है जिसमें हमारा जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट में जो बायोडाइवर्स, जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है, जो पर्यावरण की स्थिति है, उसके बारे में लेख लिखा गया है। ये बहुत अच्छा लेख है और इसे आपको पढ़ना ही चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि पर्यावरण पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मेरा जो मुख्य विषय है वो भी जैव विविधता पर ही है, बायोडाइवर्सिटी पर। जैव विविधता पर एक सप्ताह के अंदर दो रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि अखबारों में आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला होगा, खासकर हिंदी अखबारों में, लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है, तो उस एडिटोरियल को ही मैंने आज अपने मुख्य विषय का आधार बनाया है। अभी दो रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट है द यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट, और जो दूसरा है वो है WWFS लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। ज्यादा अच्छा होगा कि इसे आप जो कहते हो याद कर लें और इसे आपको नोट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है बायोडाइवर्सिटी पर। अब आप देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, सीधी सी बात है, अगर इन दोनों रिपोर्टों को मिला दें तो इसमें ये बात कही गई है कि हमारे यहां जो प्राकृतिक संसाधन है, ये विश्व के लिए है, भारत के लिए नहीं है, केवल पूरे विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, शोषण हो रहा है कह लीजिए, बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगी है, एग्रीकल्चर का फैलाव हो रहा है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी बहुत तेजी के साथ खत्म हो रही है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जो जीवन की गुणवत्ता हो सकती है, होती है, उस पर पड़ रहा है। और भारत जैसा देश आप सोच सकते हैं जहां लिविंग स्टैंडर्ड इतना नीचे आंका जा रहा है, उसके लिए ये और भी ज्यादा चेतावनी वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफी नीचे है जिसे हमें ऊपर ले जाना है। तो दोस्तों, इसमें अब जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा मैं अलग करके आपको बता रहा हूं, ये एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आप इसे देख लेंगे। जो WWFS की जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है, इसे आप बस ध्यान से सुन लीजिएगा, कि 1970 से 2016 के बीच, यानी कि 46 सालों में, मोटे तौर पर चलिए 50 साल आप कह लीजिए, एनिमल पॉपुलेशन, जंतु, पशु और जंतुओं की जो प्रजाति है वो 68% खत्म हुई है। 68% डिक्लाइन हुई है, कहना चाहिए कम हुई है, 68% 50 सालों में। कल्पना करके देखिए, 68% जीव जंतुओं की प्रजाति नष्ट ही हो गई है। बहुत ज्यादा डरावनी रिपोर्ट है जो सच है। दूसरी जो यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम खराब हो रहा है, पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, उसके आधार पर एक आईची टारगेट फिक्स किया गया था, आईची टारगेट 2020 के लिए, जिसमें 20 टारगेट फिक्स किए गए थे कि 2020 तक हम अचीव कर लेंगे। उस रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें से एक भी टारगेट अचीव नहीं होगा, अब तो 2020 खत्म ही होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा। अब जो मैंने आपको आईची टारगेट जो कहा है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बेसिकली ये जापानी शब्द है AICHI, इसका मतलब होता है लव नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्यार कीजिए, ज्ञान के प्रति प्रेम। बेसिकली 2010 में, अक्टूबर 2010 में, जापान का एक शहर है नगोया, NAGOYA, नगोया शहर है। इस नगोया शहर में अक्टूबर 2010 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें बायोडायवर्सिटी के लिए 20 टारगेट फिक्स किए गए थे, और यह कहा गया था कि ये जो 20 टारगेट है हम 2020 तक हासिल कर लेंगे, यानी कि 10 साल तक के लिए ये टारगेट थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टारगेट अचीव नहीं किए जा, एक भी टारगेट, 20 में से हम एक भी टारगेट प्राप्त नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको उस 20 टारगेट के बारे में बता सकूं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि इन 20 टारगेट को 5 ग्रुप में बांधा गया है, मतलब 5 ग्रुप में, और 5 ग्रुप को जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो फिर वो 20 टारगेट निकल करके आते हैं। तो 5 जो मेन टारगेट हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। पहला है कि ये जितना भी संकट पैदा हो रहा है वो पर्यावरण के नष्ट होने के कारण हो रहा है। दूसरा ये हुआ है कि जैव विविधता पर हम दबाव कम करें और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका सस्टेनेबल यूज करें, उनका धारणीय उपयोग करें। तीसरा यह है कि जो पर्यावरण है और जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, और जो हमारे यहाँ जीनेटिक जो डाइवर्सिटी है, जो जीन्स विविधता है, उसकी हम रक्षा करके अपनी जैव विविधता को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करें। जो नेक्स्ट है, चौथा, वो है जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को हम बढ़ाएं। और पांचवा और लास्ट है कि बकायदे इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, कि हमारा जो कार्य रूप है वो बेहतर हो सके, तो अपनी योजना को पार्टिसिपेटरी बनाएं, यानी कि जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, इसके ज्ञान का प्रबंधन करें, नॉलेज मैनेजमेंट, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं, हमारे पास जो कह लीजिए कि सामुदायिक ज्ञान है प्रबंधन का उनका हम उपयोग करें, और हम क्षमता निर्माण भी करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें अपने लोगों की भी, संस्थाओं की भी, सरकारों की भी, ताकि बायोडाइवर्सिटी की रक्षा हो सके। तो ये 5 मेजर जो इसके पार्ट है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन्हीं 5 को फिर और डिटेल में बता करके इसे 20 टारगेट फिक्स किया गया है, और मुझे लगता है कि इस टारगेट के बारे में आपके पास थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं रवि दत्त और भूरा राम, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।